देश नहीं है,
वो तो समदर्शी हैं, जैसे सूर्य समदर्शी हैं, सबको समान रूप में प्रकाश देते हैं, किंतु जो उल्लू हैं, जो अपना आंख बंद किए हुए हैं, उनको प्रकाश कहाँ से मिले? सूर्य तो दे रहे हैं अपना प्रकाश, और उल्लू आंख बंद के कहता है ये दिन है कि रात है उसको पता नहीं, तो ये पक्षपात हुआ यदि अपना ही बंद कर रखे हैं। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है जब उदित होते हैं, और कोई अपने को घर में बंद करके अंधकार में रहे तो प्रकाश कहां से पाएगा? वो यदि कहे कि हमको प्रकाश नहीं मिल रहा है, सूर्य भेदभाव कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही भगवान की कृपा सब पर बरसती है, जिस रूप में जो योग्य है उसको उसी रूप में ग्रहण करता है। अरे और की भक्ति की तो बात छोड़ दो, तस्मात वैरानुबंधे न भय न और क्या स्नेह न कामे न निर्वैरेण भय इत्यादि। यदि कोई भक्ति से भगवान का भजन करे, भय से करे, काम से करे, स्नेह से करे, चित्त भगवान में आविष्ट कर दे, आविष्ट माने क्या, आविष्ट कर दे, आविष्ट माने क्या, आविष्ट का एक उदाहरण ऐसे समझ लीजिए सरल सहज में, हम लोग सुन रहे हैं, आवेश किसी का नहीं है, बहुत कम लोगों का आवेश इसमें है। एक मैंने कोई हमारे पास में वो था जिसमें सांप रहता है, विषधर सर, और लेकर के हमने इधर में छोड़ दिया, क्या करेंगे सब लोग? ऐसा आवेश हो जाएगा जो सांप जिधर जाएगा उधर ही नजर जाती चली जाएगी, सांप इधर से जाएगा तो सब लोगों की नजर कहां रहेगी? उठ करके खड़े होकर के पहले तो भागेंगे सांप को देख करके जिधर सांप नहीं जा रहा, और उसी में आविष्ट हो जाएंगे और रोमांच हो जाएगा, भीतर में भय हो जाएगा, ऐसा उसमें जो एक मिनट भी इधर उधर नजर नहीं जाएगी, चित्त नहीं जाएगा, मन नहीं जाएगा, सब उसमें आविष्ट हो जाएगा, यह है भय। इसलिए भय के द्वारा बैर के द्वारा बैरानुबंध है ना, चित्त सहज रूप में वो आविष्ट हो जाता है। ऐसे यदि भक्ति के द्वारा कोई चित्त भगवान में आविष्ट करे, स्नेह से करे, निर्भय माने किसी से बैर नहीं, अर्थात भक्ति, यह साधारण भक्ति निर्भय बने, कामे न काम से भी यदि निविष्ट हो जाए, जैसे भी हो कृष्ण में चित्त आविष्ट हो जाए, जैन के उपाय न कृष्ण मनोनिवेश, चित्त को निविष्ट करना चाहिए, आविष्ट होने की चेष्टा करनी चाहिए, होगा नहीं जितना भय में और बैर में जल्दी से स्वाभाविक रूप में हो जाता है, भक्ति में जोर लगाना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं। इसके बाद में ऐसा कह करके, ऐसा क्यों कहा, किसी प्रकार से चित्त भगवान में लगना चाहिए, शत्रुता से हो, डर से हो, भय से हो, काम से हो, शत्रुता से हो, पांच या छह प्रकार का उन्होंने बतलाया, छह प्रकार से बतलाया, उसी को उपमान देकर के फिर बतला रहे हैं, और फिर एक उसमें बतलाया जथा बैरानुबंधे न क्या मतम तन्मय तामयात न तथा भक्ति योगे नीति में निश्चितामति। हमारा निश्चित मत है कि जिस प्रकार से बैर से, भय से, शत्रुता से चित्त कृष्ण में आविष्ट हो जाता है, भक्ति के द्वारा नहीं होता है। भक्ति माने यहां पर क्या कहा गया, वैधि भक्ति। वैधि भक्ति कौन सी वैधि भक्ति, जिसमें अभी अनर्थ भरे पड़े हैं, चित्त को ले जाते हैं कृष्ण में और चित्त भागता है उधर, अभी भागवत सुनने के लिए आए तो उसमें नींद आ जाएगी, इस तरह से हम चित्त को ले आते हैं इधर में किंतु चित्त नहीं लगता, यह है वैधि भक्ति। और रागानुगा भक्ति है वो जो रुचि के साथ में होती है, लोभमय जो होती है, वो क्या करती है, एक बार रुचि से आरंभ होगी उसमें चित्त आविष्ट हो जाता है, इसलिए वो उसके बाद में आसक्ति और आसक्ति के बाद में भाव हो जाता है, तो उसके लिए बहुत सौभाग्यवान होने की जरूरत है। गुरु वैष्णव का की जिस पर कृपा बरसे अहित के रूप में उसके लिए संभव है, इसलिए कहते हैं हमारा निश्चित मत है। भैरव अनुबंध के द्वारा जैसे चित्त आविष्ट हो जाता है भगवान में, जैसे शिशुपाल चार भुजा लेकर के जन्मा, चार भुजाएं थी, उसको आकाशवाणी हुई, जिसको देखने से, जिसके दर्शन से दो भुजाएं गिर जाए और दो भुजाएं रह जाए, वही इसको मारेगा। अम्मैया बड़ी चिंतित थी, वो तो शिशु था छोटा, दो चार वर्ष हो गए या थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ कृष्ण उसको दर्शन करने के लिए आए। उनकी बहन का, उनकी बुआ जी का लड़का था, कुंती की बहन थी, उसी का लड़का, वसुदेव जी की भगनी। कृष्ण आए उपढौकन उपहार लेकर के बच्चे के लिए, और वहां रख करके बच्चा, उसने बुआ जी ने बच्चा उनकी गोद में दे दिया। गोद में देने के पहले ज्यों ही कृष्ण ने उसके तरफ में देखा, वह उसकी दो भुजा गिर गई। अब वो बहन, वो खूब बुआ जी रोने लगी, ये तुम्हारे हाथ से मरेगा। कहे मैं नहीं मारता, मैं क्यों मारूंगा। उन्होंने कहा कि तुम प्रतिज्ञा करके, संकल्प करके कहो जे मैं इसको नहीं मारूंगा। उन्होंने कहा जी ऐसा तो नहीं कहता, किंतु 100 तक कोई अपराध करेगा तो नहीं मारूंगा, इसके बाद में हम विचार करेंगे। अच्छा तो 100 कैसे आपको उसको अपमान गाली नहीं देगा। अच्छा ठीक। अब वो जब होश आया तब उसने सुना कि हमको इसी के हाथ से मरना है, तो क्यों नहीं मैं पहले ही उसको मारूं। अब इसकी भावना आई, बस शत्रुता कर लिया। एकदम जन्म से पानी पिता तो उनको कोसता हुआ, गाली देता हुआ, एकदम उसकी दृढ़ भावना हो। अब वो ऐसा हो गया उसमें, मरने की चिंता उसमें, जो उसमें आविष्ट हो गया। और आविष्ट होने से क्या हुआ, उसके जितने पूर्व जन्म के कर्म और जो कुछ था वो सब कुछ निर्मल हो गया आविष्ट होने से। गाली देना भी भूल गया सब कुछ, किसी वैष्णव की निंदा इत्यादि करना ये सब बातें भी भूल गया कृष्ण से बैर के होने से। ये बैर क्या चीज है, परमार्थिक तो है नहीं, है क्या चीज है? परमार्थिक किसको कहते हैं, इस चीज को समझना चाहिए। यदि कोई हम भीतर में कोई देश भाव लेकर और किसी भगवत संबंधी वस्तु का अनादर करते हैं, अवज्ञा करते हैं, निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो ये परमार्थिक हानि होगी। और ऐसे साधारणों के प्रति जो कर्म है, कोई निंदा गाली चुगली, ये सब साधारण लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ये परमार्थिक हानि नहीं होगी। अजामिल ने जो कार्य किए थे वो क्या था, लौकिक कार्य थे, इसलिए उसका अपराध नहीं हुआ, नहीं हुआ उसका अपराध। अपराध किसका होगा, यदि भगवत संबंधी हरि नाम है, यदि उसका अनादर करता है, उसका और दूसरे दूसरे देवताओं का नाम एक बराबर समझता है, गुरु जी की अवज्ञा करता है, गुरु जी की अवज्ञा करने से ये भगवत संबंधी है, अपराकृत तत्व है। वैष्णव की निंदा करते हैं, ये अपराकृत तत्व है। इनके संबंध में यदि मजाक में भी यदि कुछ करेगा, यदि अवहेला करेगा, मारना पीटना तो बहुत दूर की बात, यदि अवज्ञा कुछ कर दिया तो यह अपराध होगा, भक्ति को समूल ही खत्म कर देगा। यदि कोई वैष्णव की हंति मारता है, निंदा करता है, हंति निंदती वही देशती, द्वेष करता है, वैष्णव लोग आए उनका भी नंदन नहीं किया, अरे ये क्या है, बेकार है ये सब, उठ करके अभिवादन नहीं किया, और क्रुद्धते जातिनो हर्षम देख करके क्रोधित होता है। या कोई एक आदमी उसे द्वेष पूर्वक कुछ कह रहा है तो कहता हाँ हाँ वो ठीक है, बहुत अच्छा, ये वैसे ही व्यक्ति है, ये अनुमोदन भी यदि किया, वैष्णव की निंदा भी सुना और अनुमोदन नहीं करके चुपचाप शांत भी रहा, महाघोर अपराध हो जाएगा, क्योंकि ये वैष्णव विष्णु संबंधी है। इन्हें खूब सावधान रहना, भूल से तो हम तो भूल देखेंगे ही, अपराकृत वैष्णव का चरित्र हम लोग नहीं समझते, इसलिए हम लोग कभी कभी बाध्य हो जाते हैं। ऐसे लोगों का संग कभी स्वप्न में भी मत करना, जो गुरु वैष्णव की निंदा करते हैं, नाम की करते हैं, परमार्थ की करते हैं, इनका कभी भी संग मत करना, यदि परमार्थ चाहते हो। इसलिए मारना पीटना तो बहुत उसे निरंजन क्या होगा, ये सब बातें भी नहीं होनी चाहिए। और ये नहीं होने पर यदि भगवान से बैर है और सब बातें हैं तो चित्त अभिष्ट होने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है, किंतु किस रूप में होती है उसको ये दिखला रहे हैं। इसलिए यहां उदाहरण देकर के आप कह रहे हैं कीट पेश कृता रुद्ध कुड्यायन तमोनुस्मरण। एक तैल पोका होता है, तेल पीते हैं, और एक पानी में रहने वाले सड़े गले पानी में रहने वाला बड़ा बड़ा इतना बड़ा कीड़ा होता है, सब जगह जहां पर गंदा होता है वहां पर वो रहते हैं। कांच पोका जो होता है तैल पोका वो बड़ा तेजस्वी होता है, वो उसको पकड़ लेता है अपने से बड़े कीड़े को, जैसे सिंह अपने से बड़े हाथी को पकड़ लेता है वैसे ये कीड़ा उसको पकड़ लेता है और पकड़ करके उसको अपने माद में ले जाता है घोंसले में और उसके रास्ते बंद कर देता है और उसके सामने डराता है। डराते डराते वो डर के मारे उसका चिंतन करे अब मार दिया कि उसका चिंतन करते करते कुछ दिनों में ही उसकी शक्ल बदल जाती है और वैसा ही बन जाता है। इसी तरह से यदि कोई चतुर्भुज विष्णु है भगवत तत्व है शत्रु भाव से भी यदि चिंतन करता है तो चिंतन करते करते क्या होगा, भरत महाराज यदि चिंतन करते करते अंत में बन गए कैसे, हिरण बन गए। ये मन की कल्पना मत समझना, हरि भजन मन की कल्पना नहीं है। अंत समय में जैसा मन उसका चिंतन करेगा आविष्ट होकर के वैसा ही उसका जन्म होगा, जैसे भरत महाराज जी का हुआ, ठीक ऐसे ही शिशुपाल दंत पक्र इत्यादि ऐसे ही चिंता कर रहे हैं। और इसी रूप में यदि कोई आविष्ट होकर के करे तो अंत में उसकी वो गति होगी। अष्टकालीय जो लीला है क्या चीज है, बहुत उन्नत स्तर पर है, ऐसे ही अविष्ट होकर के दिन रात ख्याल नहीं। जय धर्म जरा उठा करके देखो, पहले ही चैप्टर में सवेरे का समय है, बाबा जी हरिनाम कर रहे हैं, कोई प्रेमदास बाबा जी ना क्या नाम हरिनाम करे, हरे कृष्ण हरे, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। पीछे एक बैठे थे उनसे कहा जी से, अरे रमण मंजरी ये बंदरी जो कक्खटी बंदरी बूढ़ी जो खिलखिला रही है इसको बंद करो और राधा कृष्ण के सेवा में शयन कर रहे हैं अभी सवेरे ये व्याख्यात कर रहे हैं उनको चुपचाप जल्दी से बंद करो। बाबा जी देख रहे हैं कि अभी सवेरा हो गया है किंतु लीला चिंतन क्या कर रहे हैं, कृष्ण लीला का, निशांत लीला का, ऐसे आविष्ट हो गए हैं न तो वहां पर बंदरी है न तो रमण मंजरी है न तो वृंदावन है किंतु देख रहे हैं यह वृंदावन है, देख रहे हैं कि यह रमण मंजरी बैठी हुई है और उनको आदेश दे रहे हैं। ये किस चीज का फल है, आवेश। महाप्रभु जी इसी आवेश के लिए कहे भजन राज्य में यदि ऐसा आवेश नहीं हुआ नाम लेते समय भगवान के तरफ में भक्ति में आवेश यदि नहीं हुआ ये तब तक वैधी भक्ति है, ये इतनी दुर्बल है कि वहां तक ब्रज तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए लोभमयी जो श्रद्धा और उससे उत्पन्न होने वाले जो श्रद्धा निष्ठा और इसके बाद में जो रुचि होती है उसमें निष्ठा का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो एकदम रुचि से उत्पन्न होती है। इसी को ये दिखला रहे हैं, ऐसी उसमें आवेश होना चाहिए जो लोभ होने के बाद में होता है, चित्त कहीं नहीं जाए। कोई समय अवसर नहीं है जो दूसरे वैष्णवों की निंदा करेगा, समय बेकार का जाएगा, ऐसे महापुरुषों के लिए नियम नहीं है। ये 1 लाख करें कि 2 लाख करें कि 10 लाख करें कि 5 लाख करें कि 1 नाम करें, महाप्रभु जी के अपने लिए नियम था, दिन रात 24 घंटा में आविष्ट रहते थे। मैं श्रीमती राधिका हूं और उसी में आविष्ट रह करके विभिन्न रूपों में ऐसे आविष्ट हो जाए लंबे 10 हाथ हो जाते और कभी कुर्माकृति हो जाते, उस समय संख्या लेकर के माला करते थे, रूप गर्भ स्वामी ऐसे अवश्य हो जाए। इन महापुरुषों के लिए कोई भी नियम कानून नहीं है, वो नियम से निरंकुश है, नियम है हम लोगों के लिए। जब तक ये अवस्था आसक्ति अंततः नहीं आती, भाव अवस्था नहीं आता है, तब तक ये नियम जरूर करना चाहिए। इसलिए महापुरुष ऐसे जो हैं जैसे नारद जी हैं, ऐसे महापुरुषों से ये सब कथाएं सुननी चाहिए। यदि नहीं है तो भी हमने सुना है प्रभुपाद जी कोई नहीं रहता तो देवाल के साथ में हरि कथा कर रहे हैं, कोई एक बच्चा आ गया उसी को रख देख करके और उसी को उपदेश देने लगे, 10 बज गया, 11 बज गया, घंटी बज रही है, अब प्रभुपाद जी बिगड़ रहे हैं घंटी बजाने वाले के ऊपर में, वो कहते हैं प्रभुपाद जी का शरीर खराब हो जाएगा, उनको भी हटा रहे हैं। अब प्रभुपाद जी एकदम अभिष्ट होकर के बोल रहे हैं, ये सब है भजन। इन सब चीजों से प्रहलाद महाराज उपाख्यान से हम लोग इन चीजों को समझते हैं। उन्होंने इसके द्वारा एक श्लोक और भी है, जिसे मालूम होता है कि प्रहलाद महाराज जी को हम लोग जैसा समझते हैं वैसे नहीं, केवल वैदिक भक्ति वाले नहीं थे, उन्होंने सब चीजों का इंगित दिया, उसमें शांत दास सख्य बात्सल्य और मधुरत्व का भी इंगित उसमें दिया है। नारद जी साधारण नहीं है ना, नारद जी किसी को हरी कथा कहेंगे ना, योग्य के अनुसार में योग्य कथा कहेंगे, ये बात तो ठीक है, किंतु किसी न किसी रूप में वही भाव आएगा, शांत भाव कहेंगे तो मधुर ले आएंगे, कोई भी कथा कहेंगे वो मधुर भाव लाएंगे ही। नारद जी ऐसे साधारण नहीं है, इसलिए वो उसमें भी उसने प्रकाश पाया। प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान में भी हम लोग एक बार कहीं पाठ कर रहे थे मथुरा में ही, बात है क्या तो इस तरह से हाँ, तो यही उस श्लोक का इसमें बतला, जरा बाहर करो तो पहले इसका कर लें। इसमें बतलाया पेश कृष्ण, वो कीड़ा उसको पकड़ लिया, वो अविष्ट होकर के देखा, अब मरा उसको देख करके, और उसी का रूप धारण हो जाता है। ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, ये मन का आवेश है। यदि ये चेतन आभास जो मन है जड़ भी है, और वो भी चिंतन करते 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 उसी के द्वारा और वैसा रूप उसका हो जाता है, तो भक्ति में यदि हम लोग उस प्रकार का चिंतन यदि हो और गुरु भी ऐसे हों, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। इसलिए अष्टकालीय लीला की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। भक्त विनोद ठाकुर जी ने भी जैव धर्म और इसमें लिखा, अधिकारी लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। इसलिए आवेश होकर के करना, नाम करना, हरे कृष्ण हरे, अरे अभी रसोई नहीं बनी, ऐसा नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, देखा जैसे वो कुछ गड़बड़ है, दौड़ करके गए हरि नाम की माला रख करके एक थप्पड़ लगा दिया, ये सब मत करो। आविष्ट होकर के महाप्रभु आविष्ट हो या करें व्याख्यान है ना, कहीं महाप्रभु आविष्ट होकर के बुलाया। तो इस तरह से काम, आप काम बहुत गंदी चीज है। काम माने क्या, रूप के प्रति आकर्षित होकर के जब कुत्ते जैसे हम बन जाते हैं, इसको कहते हैं काम। उस समय बुद्धि कोई काम नहीं करती, जैसे शंकर जी का मोहिनी का रूप देख करके हो गया, ये चीज है काम। उसमें मन में कंट्रोल करना है, नारद जी के लिए भी, समित्र के लिए, ऐसे बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी संभव पर नहीं होता है। काम है बहुत गंदी चीज, इससे खराब और कोई चीज नहीं है, किंतु इसको भी काम को भी भगवान में लगा दिया जाए तो क्या करेगा वो, सबसे उन्नत किस्म की कृष्ण में वैसी भक्ति हो जाएगी। जैसे कामी लोग कहता होता है, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कहते हैं कामी को जैसे नारी प्यारी होती है, दिन रात उसमें डूबा रहता है, ऐसे ही आपके चरण कमलों में हमारा चित्त हो आवेश के साथ। सुनने में तो ये खराब लगता है, महाप्रभु जी ने एक ऐसा ही उदाहरण दिया है, एक नारी वो दूसरे पुरुष के साथ में उसका चित्त लग गया है, किंतु घर का काम ऐसे करती है कि किसी को मालूम ना पड़े जैसे ये खराब हो रहा है, नहीं तो वो टोकेंगे, कहिए तुम्हारे चित्त कहाँ है, इसने मन लगा करके इस काम को, चित्त कहाँ है पर पुरुष में, बात तो गंदी है किंतु परमार्थ में लाने पर यह सर्वोत्तम बात हो जाती है। इसलिए कृष्ण में आवेश हो तो ऐसा, यही सर्वोत्तम भक्ति है। इसी को पारकीय भाव अपराकृत राज में बतलाया गया। इसलिए कामात भयात न देशात, देश देश बहुत खराब चीज है, किसी से देश मत करो। निंदा भी दो तरह की होती है, एक पृथ्वी गर्भ और एक देश गर्भ। यदि प्रतिपूर्वक किसी की निंदा की जाए, जैसे गोपियां कहते हैं कि बड़े काला है कृष्ण को, धूर्त है, चोट्टा नंबर एक, स्कूल उस कुल दोनों को चोरी करने वाला है, दुकुल चौरम, इस तरह से क्या नहीं करती हैं। किंतु यह कैसा है? प्रतिगर्भ है, यह निंदा नहीं है। और दूसरी तरफ में यदि द्वेषपूर्वक, इतना भी द्वेषपूर्वक को निंदा हुई तो हमारा परमार्थ ही को चौपट कर देगा, इसलिए ऐसा कभी जीवन में अवसर नहीं आने दो। भयात भय, स्नेहात स्नेह, भक्त्या भक्ति, किसी भी प्रकार से आवेश तदहंग हित्वा, अब आवेश होने से उसके अघव दूर हो गए, किसके जो जो ऐसा किया, काम का दोष दूर हो गया, शुद्ध में पारमार्थिक प्रीति पाया, द्वेष दूर हो गया, भजन करते करते वैसा करते करते भय दूर हो गया और उसमें आविष्ट होने से परमार्थ को पा दिया। अब उसी को बतला रहे हैं उदाहरण दे करके, गोप्य कामा, गोप्याज के उदाहरण नहीं है। तभी नारद जी किस लिए कह रहे हैं? अच्छा समझो, अभी अभी तुम समझदार नहीं है इसलिए उनके लिए कह रहे हैं। गोपियों में काम था? काम तो था नहीं, उनका तो प्रेम था। किंतु साधारण लोग उनको देखते हैं कि अपने पतियों को छोड़ करके, बच्चे को छोड़ करके, गुरुजनों को छोड़ करके, लोक लज्जा हाया सब कुछ छोड़ करके कृष्ण से मिली, पर पुरुष से। कहा अच्छा ठीक है, ऐसा भी कोई बात नहीं, तो अभी उनको ऐसा होगा, कृष्ण को वो प्राप्त हो गई, गोपियों का काम था और ये सर्वोत्तम कोटि का ही है। इसलिए भक्ति में ये जो भी बतलाएंगे, कौन कौन बतलाया, काम देश भय स्नेह और भक्ति का जो बतलाया, इसमें केवल लिया काम को नहीं, भक्ति नहीं लिया, काम को लिया और एक को लिया, संबंध या स्नेह, स्नेह युक्त संबंध, ये दो को लिया और बाकी सबको छाट दिया। इसलिए भक्ति जो होती है ब्रज वाली गोपियों की, वो दो तरह की हुई, द्वेष ये भक्ति का विरोधी है इसलिए इसको दूर कर दिया, नहीं ये भक्ति में नहीं चलेगा, साधन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्यों ये प्रतिकूल भाव हो गया, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्वेष नहीं होता है, उनको मारने के लिए होता है, इसलिए इसको दूर कर दिया, ये साधन नहीं। और भय, भगवान से भय क्या है, इसलिए इसको भी दूर कर दिया, ये तो दोनों दूर हो गए। और रह गया स्नेह, एक अंश में साधनीय नहीं है, ये कौन से साधन में, स्नेहमान प्रणय अनुराग ये साधन का नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया। अब दूसरे अंश में स्नेह जो है, पांडवों का जो स्नेह है वो कुछ मर्यादा लिए हुए है, इसलिए इसको भी छोड़ दिया। इसलिए दो रह गए, क्या रह गया, संबंधात्मिका और कामात्मिका। कृष्ण से संबंध होना चाहिए, कृष्ण मेरा बेटा है, कृष्ण मेरा मित्र है, नहीं? इस तरह का कोई संबंध होना चाहिए कृष्ण के साथ में, नहीं तो यह भक्ति नर्वत लीला के अनुसार में नहीं होगी। लौकिक सद्बंधु की भांति उनसे प्रीति होनी चाहिए, लौकिक एकदम, जैसे सखा उनसे लग जाते हैं, अपने कंधों पर लेते हैं, जूठा खिलाते हैं। गोपियां कैसे खिलाती होंगी, अमनिया करके ना, कृष्ण उनसे छीन करके खा रही हैं, छीन करके झपट करके खा ली। जब सखाओं का खा लेते हैं तो गोपियों की तो बात क्या। कभी कभी ऐसा सुना है कि उनके चर्बित तंबुल को भी लेकर के कृष्ण ग्रहण कर लेते और अपना भी दे देते। तो इसलिए कहते हैं कि लौकिक सद्बंध वत जब तक कृष्ण में भाव नहीं होगा तब तक रागान हुआ भक्ति का ये लोभमयी होगा ही नहीं, इसलिए वो वैदिक अंतर्गत में मर्यादा पूज्य है और उसके द्वारा ब्रज कभी नहीं मिलेगा, ऐश्वर्य शीतल प्रेमे नहीं मोरे प्रीत। अब दो को केवल लिया, किसको लिया, स्नेह को तो लिया नहीं, अब ले आए एक संबंध को कामत, इसलिए वैसी भक्ति जो होती है गोपियों की एक कामात्मिका और दूसरी होती है संबंधात्मिका। यशोदा जी का संबंधात्मिका है, नंद बाबा का संबंध देता कैसे, नंद के घर में उनकी स्त्री से उत्पन्न हुए, गर्भ से उत्पन्न हुए, इसलिए यह संबंध हुआ। यह संबंध कभी भी नहीं छूटने वाला, इस संबंध से ममता होती है। अब बिना ममता के भक्ति नहीं होगी, आवेश नहीं आएगा, इसलिए ममता होना, ममत्व होना चाहिए। भक्ति भाव की अवस्था में ममता थोड़ा सा कम होता है, और सिद्ध अवस्था में जहां प्रेम जब होता है तो क्या होता है, ममता अतिशय अंकित अत्यंत अधिक होता है ममता। ये ममता के ऊपर में ही भक्ति है। यदि गुरु के साथ में तुम्हारी ममता नहीं है तो समझो तुम्हारी सेवा नहीं हुई। वैष्णव के साथ में ममता नहीं है, जे ये मेरे हैं मैं उनका हूं, नहीं होगा कुछ। जहां मेरा हुआ ना, अपना सर्वस्व उनके चरणों में हम दे देंगे। अब ममता नहीं है तो कुछ नहीं देंगे, इसलिए गुरु के प्रति ममता नहीं होती, यही तो भक्ति में बाधक है। इसलिए गुरु वैष्णव के साथ में ममत्व होना चाहिए, उनके लिए प्राण अपनी हथेली में लेकर के कोई सेवा करे, ये प्रहलाद महाराज जी का उपदेश है। इस तरह से यदि करो तो भक्ति होगी। इसलिए कामात्मिका, और कामात्मिका में भी बहुत से चीजें हैं, कुब्जा का साधारण काम, द्वारकावासियों की गोपियों वहां के रमणियों में समंजसा, और गोपियों में समर्था। समर्था भी बहुत प्रकार की है, लाखों प्रकार की, जिसका जितना सामर्थ्य है। कृष्ण के प्रति ममत्व जिनका अधिक है, श्रीमती राधिका जैसा कृष्ण के प्रति किसी का ममत्व है, इसलिए उनका जो ममत्व है उसी ममत्व का अनुगत्य करना चाहिए। जिसको मधुस्नेह लाते हैं, प्रारंभ से ही ऐसी भक्ति होती है। इसलिए इसमें यह भी अंगित दिया, संबंध का संबंधात्मिका से भी उतने प्रसन्न नहीं, वो महाप्रभु जी का अपना नहीं था, रूप गोस्वामी का अपना नहीं। रूप गोस्वामी का अपना क्या है, कामात्मिका के अंतर्गत में भी उनकी सेवा की वासना है, उन दोनों में मिलन करके उनकी हम दोनों की सेवा करें, हम लोगों के लिए वही उचित है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान में ये सब चीजें सूत्र के रूप में बड़ी आच्छादित रूप में ये सब चीजें बतलाई गई हैं। इसलिए यदि एक भी चीज को हम लोग समझ सकें तो हमारा समाज श्रीमद् भागवत का फल एक उपाख्यान में ही क्या, एक उसी श्लोक में ही आ जाएगा। हम लोग ऐसे ही चेष्टा करें, या ऐसे ही समझ करके कृष्ण में हमारा आवेश। आज यहीं तक रहे, कितना बज गया, 7:35 हो गया, तो 35 मिनट अधिक हो गया। तो आप लोग इन चीजों को समझेंगे, अच्छा अच्छा ये समझिए, प्रहलाद महाराज की ऐसी ममता थी कि नहीं ममता थी। नारद जी के कृपा पात्र हैं, ऐसी उच्च कोटि का तब प्रकाश नहीं किया किंतु थी। इसलिए कृष्ण की भी इनके प्रति ममता आ गई। इन्होंने जो कुछ कहा, भगवान सत्याभिधात्म ने जो भक्त भाषितम, जैसे कहा उसकी रक्षा करने के लिए भगवान वहां पर उपस्थित थे। बच्चों को उन्होंने उपदेश दिया था बहुत सुंदर, उन उपदेशों को आप लोग पुनः पुनः पढ़ेंगे यदि भक्ति की इच्छा है। और जो जीवन को इसी प्रकार से चलाना है तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन निर्वाह हो रहा है, कोई प्रतिष्ठा मिल रही है, कोई कुछ मिल रहा है, अरे भाई भक्ति में प्रवेश करने की चेष्टा करो। चैतन्य चेतामृत श्रीमद् भागवत का अनुशीलन, ने अनुशीलन माने क्या, गाढ़ रूप में आवेश के साथ में अनुशीलन ऐसा करो, नहीं तो जीवन बेकार का हो जाएगा भाई। जैसे हम और अभी भजन करते हैं, उन्होंने शिक्षा दी, और असुर बालक जो असुर के समान बुद्धि होती है, और उन्होंने उनके एक दिन के उपदेश से समस्त बातें मान करके उनके साथ में कीर्तन करने लगे, उनका चित्त एकदम बदल गया। हिरण्यकश्यपु ने बुलाया गुरु जी को, ये क्या कहां से आवाज आ रही है कीर्तन की, कहां कीर्तन ध्वनि हो रही। उन्होंने कहा जब क्या बतलाऊं महाराज, पहले एक प्रहलाद था, अब तो हमारी स्कूल में ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जो प्रहलाद महाराज ना हो। ये तो बड़े अस्तित्व की बात है। अच्छा तुमने देखा नहीं, अभी तुमको देखो पद करते हैं। अरे प्रभु हमारा कुछ इसमें कसूर नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से उसका हो रहा है और उसके संग से ऐसे हो गए। अच्छा बुलाओ उसको, उसको लाया गया। अरे तुम किसके बल पर ऐसा कर रहा है, हमको तुम हमसे डरता नहीं है, है? कुछ आपका जो बल है वही हमारा बल है, कोई प्रभु सर्वत्र है, उनके बिना तो कोई चीज की सत्ता नहीं है, मैं उन्हीं के बल से कहता हूं। अच्छा अच्छा तो तुम्हारी वही रक्षा करने वाला कहां, वही कहां है बतलाओ तो, कहां नहीं है ये पूछ बतलाइए, सर्वत्र है। हम लोग देखते हैं, हम लोग तो नहीं देखते, बहुत दिन तक सुन भी रखे, ऐसी निष्ठा ही नहीं होती ये भगवान सर्वत्र है। नहीं तो बदमाशी चोरी करते हैं, गुरु जी से छिपाते हैं, गुरु जी की वैसी सेवा नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, भगवान को नहीं सर्वत्र देखते, भगवान को सर्वत्र नहीं जानते, तभी विश्वास रखो गुरु के चरणों में, ये सर्वत्र हैं। नहीं कहा जी सर्वत्र हैं, खंभे में है, अरे खंभे में क्या बात है, खड़ग खंभ में, खड़ग में भी है, गदा में भी है, अणु परमाणु ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ये सर्वत्र मैं उनको देख रहा हूं। तो देख रहा है, अच्छा तो देखो, तो देखते हैं कि तुम झूठ बोलता है कि सब, बस खंभा सामने था, उठा और गर्जन करते हुए मुस्तिका से प्रहार किया, और प्रहार करना था सत्याभिधातम निर्भक्त भाषितम, प्रभु एकदम खंभे से निकले, नम मृगो नम मानुषम, उस सभा में एकदम विराट शब्द, तुमुल शब्द हुआ, सब लोगों के कान एकदम बंद हो गए, और देखा अद्भुत एक सिंह, यहां तक सिंह का और नीचे मनुष्य जैसा, और कांप रहे हैं क्रोध से, आंखें लाल हो रही, हमारे भक्तों को इतना कष्ट दिया, और उसको मच्छर की भांति ऐसे पकड़ लिया, तो वो भी साधारण नहीं था, खिलाड़ी था, जय विजय स्वरण, इसलिए उनके हाथों से छूट गया, और प्रभु के हाथ से गदा भी छूट गई, देवकार लोग हाहाकार करके एकदम भगे, कहते अच्छा जो है सो है तू, बस गदा लेकर के उनके साथ में लड़ने लगा, और प्रभु उसको मदारी जैसे सांप को नचाता है, गरुड़ जैसे सांप को खिलाते हैं, ऐसा खिलाड़ी से ऐसा नचाने से, देवता लोग प्रभु ऐसा मत कीजिए, नहीं तो अभी हम लोगों को भी ध्वंस करेगा, और हम लोगों को बहुत डर लग रहा, आप जल्दी से इसको देखिए, प्रभु जी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, न दिन रहे न रात, आकाश न पाताल, न कोई महीना रहे न कोई दिन रहे, ऐसा खोज रहे थे, न अस्त्र न शस्त्र, न घर के बाहर न भीतर, उसके समस्त बड़ों को भी ख्याल रखते हुए शाम के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, इतने में सूर्यास्त हुआ, न दिन न रात, बस उसको पकड़ लिया और दहली के ऊपर में उसको रखा, और अपने जंघों पर रख करके, और आकाश भी नहीं, आकाश में भी नहीं, और कोई अस्त्र न शस्त्र कुछ भी नहीं, नखों को एकदम लगाया, और लगा करके उसके नाड़ी निकाल ली और बाहर करके गले में लगा दिया भयंकर, और जटाएं से आग निकलने लगी, जय हो। इस प्रकार से देवता लोग थरे भी काम करने लगे, उसका तो वो तो मरा एक क्षण भी नहीं लगा उसको मारने में, सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, देवता लोग डर के मारे घबरा गए, उस समय में उनको लाए, लक्ष्मी जी को लाए, प्रभु का क्रोध शांत करो, उनका क्रोध ही शांत नहीं हो रहा, शंकर जी ने कहा जे मैं नहीं जाऊंगा, ब्रह्मा जी ने कहा जे मैं भी नहीं जाऊंगा प्रभु को, डर के मारे सब थरहरी कंप लगे, उस समय में ब्रह्मा जी ने और सब लोगों ने मिलकर के कहा बच्चे तुम्हारे लिए प्रकटित हूं, तुम इनके क्रोध को शांत कर दो, जरा जाओ तो बस प्रहलाद महाराज जी ठुमक करके 5 वर्ष के छोटे बच्चे एकदम निर्विकार भाव से जाकर उनको उछल करके उनकी गोदी में बैठ गए, उनकी आंखों से जो अंगार बरस रहे थे अब शीतल आंसू बहने लगे, क्रोध शांत हो गया, जटाओं से आग निकल रही थी वो थम गई, बोले जी प्रहलाद हमारे आने में विलंब हुआ, तुमको बहुत कष्ट दिया इसमें, तुम कुछ वर मांग लो, देवता लोग सब अस्तुति करने लगे, उन्होंने कहा कि कुछ वर मांगो हमारा दर्शन अमोघ है, उन्होंने कहा कि मैं बनिया नहीं हूं जो कोई इसके बदले मांगे, इसलिए पहले हमारे अंदर में कुछ है ऐसी भावना ही, इसलिए आपने ऐसा कहा जो वर मांगो, इसलिए वर मांगने की हमारी स्प्रिया पूरी हो जाए, तो अभी कुछ मांगो, तो जब देने ही है तो हमारे पिताजी ने आपके चरणों में बहुत अपराध किया, भक्तों के चरणों में उनका दोष क्षमा कर दिया, तब उन्होंने कहा जिन्होंने जिसके कुल में उत्तम वैष्णव हो उसके 21 पीढ़ी तक तर जाते हैं, मध्यमाधिकारी भी हो तो 14 पीढ़ी तक, और कनिष्ठ अधिकारी माने दृढ़ भक्ति वाला भी वो भी तो उसके 7 पीढ़ी के लोग अनायासी तर जाते हैं उसके संबंध से, प्रभु की ऐसी उन पर दृष्टि हो जाती है, शुभ दृष्टि हो जाती है, यही अहेक्स की कृपा कहा जाती है। इसलिए तुम्हारा पिताजी का उद्धार, कुछ और मांगो तो उन्होंने कहा कि संसार वाले जितने बड़े दुखी हैं आपको भूल करके मैं जन्म जन्मांतर को उनका कष्ट झेलूं और उनको आप अपनी गति दे दीजिए। प्रहलाद महाराज जी को उन्होंने कहा ये तुम्हारी जय हो, हमारी और तुम्हारी इस गाथा को जो भी सुनेगा उन सबका कल्याण हो जाएगा, उनको भगवत भक्ति होगी। ये प्रहलाद महाराज जी की गाथा है। उन्होंने स्पष्ट करके कुछ उपाय बतलाए हैं, गुरु सुश्रूषणम जब शुभानंद ब्रह्मचारी जी बतलाया हो, जो कुछ लाभ इत्यादि है सब प्रभु को अर्पण करो, उनके लिए करो, गुरु की विषम रूप में सेवा करो जिससे वो प्रसन्न हो, अपनी प्रसन्नता मत देखो गुरु की प्रसन्नता देखो, उनकी वैष्णव की प्रसन्नता देखो। गुरु कहते हैं कि वैष्णव की सेवा करो तो उसमें मर मिटेंगे, उनकी सेवा करें शुद्ध रूप में, ये सब का करेंगे, ये शरीर एक न एक दिन तो जाएगा ही, क्यों नहीं मल करके वैष्णव की सेवा में इसको लगा दें। वैष्णव की सेवा में पैखाना फेंकना बहुत गंदी चीज है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो भागवत पाठ करूंगा केवल, ये विचार नहीं, जैसे वो प्रसन्न हो वैसी सेवा हम करेंगे जिसे वो प्रसन्न हो। नरोत्तम ठाकुर ने क्या किया, कैसे अपने गुरु जी को वशीभूत कर दिया, इसे भगवान की सेवा में ये सब गुरु की सेवा में ऐसा नहीं विचार करके। ईश्वर पुरीपाद ने कैसे अपने गुरु की सेवा की, कैसे वैष्णव की सेवा की, रामचंद्रपुरी जैसा नहीं, रामचंद्रपुरी था ना वैसा नहीं किया। इसलिए प्रहलाद महाराज जी से हम ये शिक्षा लेंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे और भजन करेंगे ऐसा, तब तो हमारा जीवन ठीक है, भागवत का सुनना हुआ, अन्यथा भागवत सुनना नहीं हुआ बल्कि कुछ सीख लेंगे कुछ पैसा कमा लेंगे बस यही तो खत्म रहा, ऐसा नहीं, बिजनेस के लिए नहीं। बोलो प्रहलाद महाराज की, श्री नृसिंह देव की, गौ प्रेमानंदे आज उसी तरह देख भोग की कामना है, भोगों से भी निवृत्त नहीं है और बढ़ती जाती है। अभी देखेंगे कोटि कोटि हमारे जन्म हुए, कोटि कोटि बार में स्त्री पति पुत्र हम लोग हुए, देवताओं का जन्म हुआ होगा, अब पराए ही कभी भोग की कामना नंदन काम में भी नहीं पूरी हुई, तत्पश्चात हम मछली हुए वहां पर भी हमारी कामना पूरी नहीं, गधे घोड़े कुआ भी हुए ये समझ के जरूर हुआ होगा, ऐसा गधे घोड़े सुकर सुकर सब कुछ हो गए, वहां पर स्त्रियां अबार रूप से मिली, बच्चे भी एक एक साल में 16 बच्चे सुकरों को होते हैं, ऐसा भी हुआ होगा, पुरुष स्त्री बना होगा, स्त्री पुरुष बनी होगी, सभी कामना पूरी नहीं, खूब मन खाया होगा, सब कुछ हुआ होगा किंतु कभी भी किसी जन्म में तृप्ति नहीं हुई भोगों से, किंतु एक बात थी उस जन्म में किसी संतों से जरूर आप लोगों का संग हुआ होगा, कुछ सुकृति बन गई थी और उसी सुकृति के नाते आप लोग मथुरा के निकट या कहीं बाहर में जन्म होने पर भी ये साधु संघ की जन्म में मिल रहा है। इस जन्म के सौभाग्य को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म में जरूर कुछ आप लोगों ने अच्छा काम किया, भक्तों की कोई सेवा की, वृंदावन में भी कोई परिक्रमा कर ली होगी, ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ अर्पण किया होगा, किसी तरह से सुकृति बनी होगी, वो सुकृति कम नहीं बहुत पुष्ट हुई होगी, तब वृंदावन धाम में किसी प्रकार से आना हुआ, संतों का समागम बिना पैसे का मिल गया सहज रूप में, यद्यपि भोग की कम भोग सुख नहीं हुआ तो भी ये सुकृतियां हो गई, होने से अभी हम लोग बैठ करके सेवा कुंज के वृंदावन के हृदय में सेवा कुंज में बैठ करके भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं को हम लोग श्रवण कीर्तन करने का ये सुयोग हुआ। और इसको सुन करके भी हृदय में वैराग्य नहीं हुआ और भगवान का भजन नहीं हुआ तो फिर वही कुकर सुकर के रूप में अब कितने 84 लाख योनियों में भ्रमण करना होगा, ये पक्का समझ लीजिए। इसलिए संसार में रहें न रहें कोई इस पर कोई बात नहीं है, या संसार को छोड़ दें या संसार में रहें, किंतु जहां भी रहें गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, जहां भी रहो चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, त्यागी हो सन्यासी हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, जैसे भी हो जहां भी रहें स्थाने स्थिता तनुवांग मनो भी, जहां जिस स्थान में वही स्थान में रहते हुए साधुओं का संग करते हुए भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करो और भगवान का खूब ठाट से कीर्तन करो। उसमें क्या करेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अब जरा सुनिए कोई कीर्तन ऐसे भगवान का कीर्तन करेंगे और करेंगे, जहां भी रहें गृहस्थ रहें त्यागी बने जहां जिस रूप में रहें, किंतु भगवान का भजन करना है। वो क्या है कीर्तन, मेरे मेरे राधा रमन, हाँ इस कीर्तन को थोड़ा सा करो, आप लोग कीर्तन करें और जीवन भर इस कीर्तन को महामंत्र को मत भूलेंगे या न भूलेंगे, जहां भी रहें जिस रूप में रहें कृष्ण के प्रति ममता बढ़ती जाए, जहां भक्ति होगी अपने आप संसार से विरक्ति भी पैदा कर देगी। इस जन्म में न तो भोग रहे हैं किंतु मालूम हो रहा है किंतु भोगों से भी निवृत्त करा दिया और कृष्ण के चरणों का अमृत तुमको पान करा दिया। इसलिए अभी सुनिए यही समस्त भागवत का सार है, बोलिए। पड़े हुए हैं अग्नि के कुंड में पड़े हुए हैं जो बिना कृष्ण के बिना गिरधारी के कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, या तो कृष्ण रक्षा करेंगे या उनके निजन जो गुरु वैष्णव है अत्यंत उनके प्रिय, इसके अतिरिक्त दूसरा जगत में हमारी रक्षा करने वाला है। हम मदिरा पान करके संसार का मोह मद ममता ऐसे भी हम हो गए हैं मुग्ध हो गए हैं कि ये ख्याल नहीं है कि हम दुख भोग रहे हैं। जैसे कोई संसार में शराब पी करके रास्ते में गिर जाए उसको 2-4 लाख भी कोई लगा दे, कुत्ता भी उसके ऊपर में सत्कार कर दे पानी पिला दे तो अभी उसको पता नहीं होता ये मैं कहां पढ़ा हूं किस रूप में पढ़ा हूं, यही गति हमारी है। भगवान की सेवा छोड़ करके प्रेम रूपी अमृत हम कहां ये शराब पी करके मत हो रहे हैं, इसे रक्षक कौन है वो कृष्ण क्या है राधा रमन गिरधारी, इसके अतिरिक्त को नहीं याद रखिए, बोलिए कोई रक्षा नहीं कर सकता जगत में। ठीक, जो पति अपनी खुद ही रक्षा नहीं कर सकता, नहीं आ रहा खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो अपनी पत्नी की क्या रक्षा करें, स्त्रियां विधवा क्यों हो जाती हैं या पति का रहते हुए स्त्रियां क्यों मर जाती हैं, खुद ही पति क्यों मर जाता है, ये पति पालन करने वाले और रक्षा करने वाले नहीं है। अरे परम पति तो वो मेरे गिरधर गोपाल हैं, इस चीज को ठीक रखो, इसे शांति और सुख नहीं होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल बस इसी से ही शांति होगी, उनको अपना बनाओ। जिनके प्रिय राम वैदेही सजिए कोटि बैरी सम जत जप पन बल सके, तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजव कंत ब्रज बनिसन भय जग मंगल कार, इस चीज को याद रखो। इसलिए कृष्ण ही हमारे सर्वस्व, ये यदि समझो रुपया पैसा रक्षा नहीं कर सकता है शांति नहीं दे सकता है, यदि होता तो अमेरिका के करोड़ों पति लोग भारतवर्ष में इस संवाद को लेने के लिए आते, हमको भक्ति दे दीजिए, नहीं हो सकते। रशिया एक तरह से अमेरिका से भी अब टॉप होने वाला था, क्या दुर्गति हुई, धन अस्त्र शस्त्र उसको रक्षा कर सका, अरे रावण से बड़ा कौन धनी होगा,
सोने की लंका बनाई। लोग सोने के नथ कंगन और ये सब पहनते हैं, हार पहनते हैं। उसका भवन ही कैसा था, लंका की चार दीवारी सोने जवाहरातों से बनी हुई, रक्षा कर सका उसको सोना और चांदी, दुर्गा जी की पूजा उनको रक्षा कर सका। हनुमान ने एक मूर्तिका मारी वो गिर गई, भगी वहां से। इसलिए एकमात्र रक्षक कौन है हमारे, यही ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदरी हमारे गिरधारी हैं, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर। इसको गांठ बांध लीजिए, कोई भी आज तक सुखी नहीं हुआ, कोई सुखी नहीं हुआ, धन से अशांति ही बढ़ती है, इस चीज को वो अच्छी तरह से गांठ बांध लिए। इसलिए बतलाया कि यदि भगवान का भजन करना है तो निष्किंचन बनो, अकिंचन बनो। कुछ भी जगत में हमारा नहीं है, कृष्ण ही हमारी संपत्ति है, इस चीज को समझो, अन्यथा सुख कभी और शांति नहीं होगी। 84 के फेर में 99 के फेर में हम लोग पड़े हुए हैं, नहीं समझाने पर भी नहीं समझते हैं, किंतु इस चीज को समझो। इसलिए ये कीर्तन जरा फिर से सुनिए और इसको कीर्तन करेंगे, और इस कीर्तन करने के बाद में महामंत्र जरूर करेंगे। अभी ये ब्रह्मचारी अपनी मधुर लीलाओं को जगत ने प्रकाशित किया। गोलोक